हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 48. वहीं दूसरी तरफ वेदांश का बंगला। रात के 10 बजने वाले थे और वेदांश अब तक अंबिका के सामने नहीं आया था। अंबिका बहुत बोर हो रही थी। उसे खुद पर और वेदांश पर भी गुस्सा आ रहा था। वहाँ करने को कुछ भी नहीं था। अंबिका बैठकर आसपास के ड्रॉर खोलकर देख रही थी, वेदांश का इंतजार करते हुए। उसमें थोड़ा बहुत सामान नजर आया, कुछ दवाइयाँ, कुछ कागज, कुछ कार्ड और कुछ फोटो। अंबिका उनमें से किसी को भी नहीं पहचानती थी, इसलिए उसने उन्हें दोबारा बंद कर दिया। बहुत निराश होकर अंबिका ने कहा, सब चीजें बेकार हैं, बिल्कुल उस शैतान की तरह। न वो किसी काम का है, न ये सारी चीजें। क्या करूं है अब? पता नहीं मेरा फोन कहाँ है और वो खुद भी नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हो गया है उसे। जिंदा तो है ना? ये ख्याल आते ही उसने तुरंत अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, ये सब क्या बोल रही हूँ मैं? उसे भला क्या होगा? लेकिन सच में कुछ हो गया हो तो? उसके पैर से भी खून निकल रहा था। ये खून के निशान पक्का उसके पैरों के ही हैं, क्योंकि और कोई तो यहाँ बेड तक आ ही नहीं सकता। अंबिका ने ये सब अपने आप से कहा। रात के खाने की प्लेट भी सामने रखी हुई थी। दिन में अंबिका के पेट में चूहे कूद रहे थे, इसलिए उसने दोपहर को थोड़ा बहुत खा लिया था। लेकिन अब उसका अकेले खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। उसने एक नज़र प्लेट की तरफ देखा, फिर बेड से उठकर खड़ी हो गई और अलमारी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन एक तरफ की अलमारी लॉक थी, दूसरी तरफ की खुली हुई थी, जहाँ उसके कपड़े थे। अंबिका ने वो अलमारी खोली और उसमें कुछ ढूंढने लगी। वो कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिससे उसे कुछ समय बिताने को मिल जाए, लेकिन कपड़ों और कुछ छोटे छोटे सामान के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। अंबिका ने एक झटके से अलमारी बंद की और बोली, यहाँ भी कुछ नहीं है, क्या करूँ मैं? अपना सिर पटक कर मर जाऊँ क्या? अब तो लगता है यही करना पड़ेगा, बस दीवारों से सिर मार लूँ, यही बचा है। इतना बोलते हुए उसने अपना सिर अलमारी से टिकाया, तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। अंबिका का ध्यान दरवाजे की तरफ बिल्कुल नहीं था और दरवाज़ा खोलने की कोई आवाज़ भी नहीं हुई। दूसरी तरफ से काफ़ी धीरे से दरवाज़ा खोला गया था, जैसे कोई अंदर झांक कर देखने की कोशिश कर रहा हो। वेदांश का कमरा काफ़ी बड़ा था। अंबिका एकदम किनारे अलमारी के सामने अलमारी के दरवाजे से अपना सिर टिकाकर खड़ी थी। दरवाज़ा दूसरी तरफ था जो वहाँ से नज़र नहीं आता था, इसलिए उसने नहीं देखा। वहीं दरवाजे पर वेदांश था। वो कल की तरह देर रात नशे में ही कमरे में वापस आ रहा था, इसलिए उसने झांक कर कमरे के अंदर देखा, ये कन्फर्म करने के लिए कि अंबिका सो चुकी है या नहीं। लेकिन जब उसने अंदर देखा तो उसे बेड पर कोई नहीं दिखा। वो तुरंत अंदर आ गया और इधर उधर देखते हुए अपने मन में कहा, बेड पर नहीं है, ये लड़की कहाँ चली गई? अब तक वो थोड़ा अंदर आ गया था तो उसकी नज़र अलमारी के पास खड़ी अंबिका पर पड़ी। वो जाग रही थी। वेदांश अपनी जगह पर ही रुक गया। वो चाहकर भी आगे अंबिका की तरफ नहीं बढ़ पाया, लेकिन अंबिका ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वेदांश को देखकर वो बहुत उत्साहित हो गई। वो तुरंत भागकर उसकी तरफ आई और शायद उसके गले लगने ही वाली थी, लेकिन कुछ सोचकर उसके सामने रुक गई और अपनी उत्तेजना को शांत करते हुए चुप होकर इधर उधर देखने लगी। वेदांश ने सवाल किया, क्या क्या कर रही थी तुम वहाँ मेरी अलमारी के पास? अंबिका ने अपने दोनों हाथ उसके सामने फैलाते हुए कहा, तुम्हारे सारे पैसे, ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड और तुम्हारी एक्सपेंसिव वॉच कलेक्शन चुरा रही थी। ये देखो ना, कितना कुछ निकाल लिया मैंने। बस सब कुछ लेकर भागने की तैयारी में थी कि तुम आ गए, मेरा सारा प्लान खराब कर दिया तुमने। उसके हाथ एकदम खाली थे, उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। इसे देखकर वेदांश ने भी मुंह बनाया और कहा, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? अंबिका ने उसे दान करने वाले अंदाज में कहा, मजाक? मजाक तो मेरी जिंदगी का बना दिया है तुमने, मिस्टर वेदांश ठाकुर। और ये बताओ, कहाँ थे तुम दो दिन से? तुम्हें पता है मैं यहाँ पर बस पागल होने की कगार पर थी। ऐसे कैसे तुम मुझे अकेला यहाँ छोड़ सकते हो, वो भी दो दिनों तक? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचते तुम। अरे हाँ, भला तुम क्यों सोचोगे मेरे बारे में? मुझे नहीं लगता तुम अपने अलावा और किसी के बारे में कभी सोचते होगे। अंबिका की शिकायतें और सवाल सुनकर वेदांश ने बिना कुछ बोले चुपचाप उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन वो खुद को रोने से रोकने की कोशिश कर रही थी। वेदांश को उसकी ये कोशिश दिख रही थी, लेकिन जैसे ही अंबिका ने उसकी आंखों में देखा, वेदांश इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर रखी डिनर की प्लेट पर पड़ी जो वैसे ही ढकी हुई थी। वेदांश ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, खाना क्यों नहीं खाया तुमने? अंबिका ने फिर से वही सवाल किया, कहाँ थे तुम पहले ये बताओ। वेदांश गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, मैं कहीं भी रहूं, मैं तुम्हें जवाब देने के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, इसलिए अपने लिमिट में रहो और चुपचाप खाना खाओ। अंबिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बिना किसी डर के जवाब दिया, मैं खाना खाऊं या नहीं मेरी मर्जी, तुम कौन होते हो? जब तुम मुझे कुछ नहीं बता रहे तो मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूं? उसके इस तरह बोलने पर वेदांश का पुरुष अहंकार जाग गया। उसने अपने हाथ से अंबिका के गालों को कसकर पकड़ते हुए उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने किया और गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही बोल रही हो तुम, लगता है भूल गई हो मैं कौन हूँ, याद दिलाना पड़ेगा। अंबिका ने अपने चेहरे से उसका हाथ हटाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। वेदांश ने उसके गालों को और भी जोर से दबाते हुए कहा, दर्द देना तो मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है, लेकिन तुम शायद चाहती हो मैं तुम्हें दर्द दूँ, इसलिए तुम मुझे इतना मिस कर रही थी जब मैं यहाँ पर नहीं था, और इसीलिए बार बार मुझे ये पूछ रही हो ना। अंबिका दर्द भरी आवाज में बोली, आह छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम, और इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे जो मैं तुम्हें मिस करूंगी। वेदांश ठाकुर, तुम्हारे जैसे शैतान को याद करने से अच्छा है मैं अपने किसी दुश्मन को याद कर लूं। वेदांश ने उसके माथे से लेकर उसके गार और पूरे चेहरे पर अपनी एक उंगली फेरते हुए कहा, दुश्मन दोस्त किसी को भी याद करने का वक्त ही नहीं दूंगा मैं, तो कैसे किसी को याद करोगी। उसके इस तरह छूने पर अंबिका को अपनी पूरी बॉडी में वही सनसनी हुई जो हमेशा से उसे वेदांश के करीब जाने पर महसूस होती थी। वो उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करते हुए उसके तरफ देख रही थी, लेकिन तब तक वेदांश ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपने बहुत करीब खींच लिया। अंबिका उसकी पत्थर जैसी बॉडी और मजबूत छाती से जाकर टकरा गई। उसने वेदांश की छाती पर अपना हाथ रखा। वेदांश के हाथ अभी भी उसकी कमर पर थे जो धीरे से उसके कपड़ों के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। अंबिका के मुंह से एक मीठी सीसकारी निकली और उसकी आंखें बंद हो गईं। इस वक्त अंबिका वेदांश को बहुत आकर्षक लग रही थी। वो एक पल के लिए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए खो गया। वो उसकी बाहों में हल्का सा कसमसा रही थी, लेकिन वो उसे छोड़ने की पूरी कोशिश नहीं कर रही थी। वेदांश की बाहों में खड़ी अंबिका ने बोलना शुरू किया, वेदांश प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, क्योंकि तुम नशे में हो, तुम्हें होश नहीं है, इसीलिए तुम ये सब। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही वेदांश के होठों में उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसकी बोलती बंद कर दी। वेदांश उसके होठों को बहुत गहराई से चूमने लगा और अंबिका अपनी जगह पर जम गई थी। उसने हिलना डुलना बिल्कुल बंद कर दिया था। टू बी कंटिन्यूड।
क्या आप लोग चाहते हैं ये रोमांस कंटिन्यू हो? और इसके बाद बहुत ही जल्द इन दोनों की शादी भी होने वाली है, शायद 50वें एपिसोड में। वैसे हमने प्लान टू किया है 50वें एपिसोड में शादी। अब देखते हैं कैसे होती है। आप लोगों को क्या लगता है, अंबिका के परिवार वाले आएंगे क्या इस शादी में? और वेदांश क्यों करेगा उससे शादी? क्या वजह है उसके पास? बताइए कमेंट करके। और कैसी लग रही है आप लोगों को अब तक की स्टोरी?